वेद अपौरुषेय हैं या पौरुषेय? वेदों के विषय में प्रश्न उठाया गया है कि ये किसी पुरुष या ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं या ईश्वरीय ज्ञान है, अतः अपौरुषीय हैं। भारतीय दर्शनों में इस विषय पर बहुत विचार हुआ, उसकी संक्षिप्त रूपरेखा दी जा रही है। वेद अपौरुषेय हैं। वेदों का रचयिता कोई व्यक्ति विशेष या ऋषि नहीं है। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जिस प्रकार लोकानुग्रह के लिए सूर्य, चंद्र, जल, वायु आदि दिए हैं, उसी प्रकार मानव मात्र के मार्गदर्शनार्थ वेदों का ज्ञान परम सिद्ध ऋषियों को दिया। उन्होंने उस ज्ञान का प्रसार किया। जिस जिस ऋषि ने जिन मंत्रों का साक्षात्कार और प्रचार किया, उस मंत्र के साथ उसका नाम स्मृति चिन्ह के रूप में रखा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, शतपथ, ब्राह्मण एवं बृहदारण्यक उपनिषद आदि में वर्णन प्राप्त होता है कि चारों वेद उस परमात्मा से ही प्राप्त हुए हैं। उसने ही अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद का ज्ञान दिया। ऋग्वेद और यजुर्वेद का कथन है कि उस विराट पुरुष ने ऋक्, यजु और साम और छंद उत्पन्न किए। अथर्वेद का कथन है कि चारों वेद विश्व के आधारभूत ईश्वर के से प्रादुर्भूत हुए। शतपथ, ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है कि ये चारों वेद उस ब्रह्म के श्वास रूप हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का कथन है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा उत्पन्न हुए और परमात्मा ने उनके लिए वेदों का ज्ञान प्रकट किया। मनु को भी अपौरुषेयत्व अभिमत है, अतः उन्होंने कहा है कि परमात्मा ने अग्नि, वायु और सूर्य के द्वारा नित्य ऋक, यजुः और सामवेद को प्रकट किया। शतपथ, ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जिस प्रकार सारे जलों का आधार समुद्र है, उसी प्रकार सारे ज्ञान का आधार वाग ब्रह्म है। सारे वेदों का अध्ययन उस वाग ब्रह्म से ही प्रादुर्भूत हुआ है, अर्थात ज्ञान का आदि स्रोत ब्रह्म है। सृष्टि के आदि में उस सर्वज्ञ ब्रह्म से ही वेद ज्ञान रूपी सरिता प्रवाहित हुई है। ऋग्वेद भी वेदों की नित्यता और अपौरुषेयता का प्रतिपादन करता है। ऋग्वेद का कथन है कि वेद रूपी वाणी विभिन्न रूपों वाली और नित्य है, वाचा विरूप नित्यया। निरुक्तकार आचार्य यास्क का कथन है कि ऋषियों ने वेदों का प्रातिभ चक्षु से साक्षात्कार किया। वे वेदों के वस्तुतः कर्ता नहीं है, साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो व भूवुः। इसलिए ऋषि की व्याख्या की गई है ऋषि दर्शनात्, अर्थात ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया है। मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन अपौरुषेयत्व के समर्थक हैं। मीमांसा दर्शन में अपौरुषेयत्व मत की समीक्षा भी की गई है और प्रश्नोत्तर के रूप में पक्ष विपक्ष की युक्तियों का संकलन भी किया गया है। पूर्व पक्ष में कहा गया है कि एक, वेद मनुष्य कृत हैं, जैसे कालिदास आदि के ग्रंथ। दो, इसमें अनित्य व्यक्तियों के नाम आदि मिलते हैं, जैसे बबरह, प्रवाहणीर, कामयत, अर्थात प्रवण के पुत्र बबर ने कामना की। इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि वेद अनादि और अपौरुषेय हैं। कठ, कुथुम, तित्तिर आदि ऋषियों से ये पूर्व में विद्यमान थे, अतः प्रवचनकर्ता अर्थात इन शाखाओं के प्रचार के कारण इन संहिताओं को काठक, कौथुम एवं तैत्तिरीय आदि संहिता कहते हैं। आख्या प्रवचनात्, दूसरे प्रश्न के विषय में कहा गया है कि बबर आदि शब्द किसी व्यक्ति के वाचक नहीं, यहाँ प्रवहन अर्थात वायु के पुत्र का संकेत है और उसकी भर भर ध्वनि के लिए बबर शब्द है, परंतु श्रुति सामान्य मात्रम। वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन भी वेदों के स्वतः प्रामाण्य और अपौरुषेयत्व के समर्थक हैं। वेदांत परमात्मा को वेद ज्ञान का कारण या आधार मानता है। सांख्य दर्शन का कथन है कि वेद अपनी शक्ति पर निर्भर है, उनके प्रतिपादित विषयों के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अतः वे स्वतः प्रमाण है। शास्त्रियोनित्वात् निज शक्त्यभिव्यक्तः स्वतः प्रमाण्यम्। महाभारत का कथन है कि वेद नित्य है, प्रलय होने पर वे अंतर्धान हो जाते हैं, पुनः नई सृष्टि होने पर ऋषिगण अपने प्रातिभ चक्षुक से उन वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। युगान्ते अंतरहितान वेदान से इतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्व मनुज्ञाता स्वयं भुआ। न्याय और वैशेषिक दर्शन ईश्वर को वेद का प्रणेता मानते हैं। उनका कथन है कि वेदों में सार्थक ज्ञान की बातें कही गई हैं, इसलिए इनका कर्ता कोई ज्ञानवान या सर्वज्ञ होना चाहिए। परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट या ज्ञानवान है, अतः वह सर्वज्ञ पुरुष वेदों का कर्ता है। उसने पश्यंती या मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया। उन्होंने वैखरी वाणी का आश्रय लेकर अपने शिष्यों और प्रशिष्यों को यह वेद ज्ञान दिया। इस प्रकार वेदों का प्रचार हुआ। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, नैयायिक और वैशेषिक दर्शन वाले वेदों को पौरुषेय कहते हुए पुरुष शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं और प्रकारांतर से अपौरुषेय या ईश्वरीय वाणी मानते हैं। ईश्वर आप्त है, अतः आप्त वाक्य होने के कारण वेद प्रामाणिक है, यही वैशेषिक दर्शन भी कहता है। ईश्वरीय वाक्य होने के कारण वेद प्रामाणिक है। मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात् तद्वचनाद् आमनायस्य। इस प्रकार न्याय और वैशेषिक का पौरुषेयत्व ईश्वरीय ज्ञान ही हुआ। तृतीय मत है कि ऋषिगण वेदों के मंत्रों के कर्ता हैं और वेदों में मंत्रों के साथ यथास्थान उनके नाम का निर्देश है। साथ ही वे यह स्वीकार करते हैं कि ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ईश्वर के अनुग्रह से ही हुआ। आदि ज्ञानदाता परमात्मा या ईश्वर ही है, वही ज्ञान का आदि स्रोत है। ऋग्वेद, तैतरीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण आदि में ऋषियों के लिए मंत्र कृत और मंत्रपति शब्दों का प्रयोग मिलता है। जैमिनीय ब्राह्मण में मंत्र कृत नारियों का भी उल्लेख मिलता है। तैतरीय ब्राह्मण का कथन है कि ऋषियों ने तपस्या और श्रम से दैवीय वाणी का अन्वेषण किया, हम उसकी आराधना करते हैं। तैतरीय ब्राह्मण में ही अन्यत्र मंत्र कृत और मंत्रपति ऋषियों को नमस्कार किया। क ऋषे मंत्र कृताम स्तोम ही ख याम ऋषियो मंत्र कृतो मनीषण अन्वेक्षण देवास तपसा श्रमेण ताम दैवीं वाचम हविषा यजामहे। ग नम ऋषिभ्यो मंत्र कृतभ्यो मंत्रपतिभ्य घ स्त्रियो मंत्र कृतः। उपयुक्त तीनों मत यह मानते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम ज्ञान परमात्मा से ही प्राप्त हुआ है। ज्ञान ईश्वरीय है, ऋषियों ने अपनी प्रतिभा से उस ज्ञान को ग्रहण किया, यह ईश्वरीय ज्ञान। ऋषिगण अपनी उच्च साधना में ऐसा ईश्वरीय संकेत, निर्देश या मंत्र प्राप्त करते हैं। योग दर्शन के शब्दों में ऋषियों को जब ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है तो वे ईश्वरीय संकेत प्राप्त करते रहते हैं। ये ईश्वरीय संकेत सार्वजनीन या सार्वलोक कल्याणार्थ होते हैं। इसी को ऋषिगण स्थूल वैखरी वाणी का प्रयोग करके मंत्र का रूप देते हैं। ऋषियों का ईश्वरीय संकेतों को ग्रहण कराना मंत्र दर्शन है और ऋषित्व है। उसको स्थूल रूप में या व्यक्त वाणी में प्रकट करना ही मंत्र कर्तृत्व है। इसी दृष्टि से ऋषियों को कहीं मंत्र दृष्टा कहा गया है और कहीं मंत्रकर्ता। भाव एक ही है, केवल शब्दों का अंतर है। इसी आधार पर मंत्रों में पद परिवर्तन, क्रम परिवर्तन आदि मिलते हैं। इसी आधार पर चारों वेदों के शाखा भेद हुए हैं। सात, मंत्र सार्थक है या निरर्थक। आचार्य यास्क ने निरुक्त में एक रोचक प्रसंग उठाया है कि वेदों के मंत्र सार्थक है या निरर्थक। कौत्स का मत प्रस्तुत किया है कि वेद मंत्र निरर्थक हैं। इसके लिए सात तर्क दिए गए हैं। तत्पश्चात आचार्य यास्क ने सिद्धांत पक्ष रखा है कि मंत्र सार्थक हैं। ये तर्क और उत्तर संक्षेप में ये हैं। पूर्व पक्ष मंत्र निरर्थक हैं, उसके ये कारण अनर्थ का ही मंत्राह। निरुक्त, एक, वेद मंत्रों का पदक्रम नियत है, शब्द भी नियत है। यदि मंत्र सार्थक होते तो उनका क्रम बदला जा सकता था और एक शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रखा जा सकता था, परंतु ऐसा संभव नहीं है। जैसे अग्नि ईले पुरोहितम ने क्रम बदल सकते हैं, ईले अग्निम और न अग्निम के स्थान पर वहनिम रख सकते हैं, अतः मंत्र निरर्थक है। दो, मंत्रों का विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों से किया जाता है, जैसे उरु प्रथस्व का विनियोग शतपथ ब्राह्मण के वाक्य के द्वारा किया जाता है कि इति प्रथयति, इसको फैलाओ। यदि मंत्र सार्थक होता तो ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य द्वारा विनियोग की क्या आवश्यकता थी। तीन, मंत्रों का अर्थ युक्ति संगत नहीं है। औषधे त्रायस्व एनम, हे औषधि तू बालक की उस तरह से रक्षा कर। औषधि कुश या दुर्वा स्वयं निर्जीव है, वह बालक की क्या रक्षा करेगी। अनुपपन्नार्था मंत्राः। चार, वैदिक मंत्रों में परस्पर विरोध है। रुद्र के विषय में एक मंत्र में कहा गया है कि एक एव रुद्रो अवतस्थे न द्वितीयः, अर्थात रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम, अर्थात पृथ्वी पर असंख्य रुद्र हैं। इससे ज्ञात होता है कि मंत्रों में परस्पर विरोधी अर्थों का वर्णन है। विप्रतिसिद्धार्था मंत्राः, 5 मंत्रों में अनावश्यक निर्देश है, जैसे अग्ने समिध्यमानाय अनुब्रूहि, अर्थात जलती हुई अग्नि से कहो, होता को अपने कर्म का ज्ञान है, उसे अनावश्यक रूप से संप्रेषण आदेश दिया जाता है। 6 मंत्रों में एक ही पदार्थ का नाना रूप में वर्णन है, जैसे अदितिः सर्वम्, अदितिर्द्योर् दितिरंतरिक्षम, अर्थात अदिति ही सब कुछ है, अदिति ही द्यूलोक है, अदिति ही अंतरिक्ष है। एक ही पदार्थ द्यूलोक और अंतरिक्ष कैसे हो सकता है? 7 मंत्रों के पदों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। अविस्पष्टार्था मंत्राः, जैसे इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। अम्यक यादृस्मिन, जारयाई काणुका, जरभरी तुरफरी परफरीका, यास्क का सिद्धांत पक्ष। आचार्य यास्क ने पूर्व पक्ष में उठाए गए उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर बहुत सुंदरता से दिया है। यास्क का मंतव्य है कि मंत्र सार्थक हैं, जैसे लोक भाषा के शब्द अर्थवंत शब्द साम्यात। प्रश्नों के क्रमशः उत्तर ये हैं। 1 लौकिक भाषा में भी निश्चित क्रम वाले प्रयोग मिलते हैं, जैसे इंद्राग्नि पिता पुत्रौ, इनमें क्रम नहीं बदला जा सकता। 2 मंत्रों का विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों से किया जाता है, यह विनियोग उदितानुवाद है, अर्थात कथित का स्पष्टीकरण मात्र है। 3 औषधि रक्षा करे, यह अनुचित नहीं है, इसमें व्यक्त की यह भावना निहित है कि उस तरह से बालक को कोई हानि न पहुंचे, यह वाक्य भावनात्मक प्रयोग है। 4 रुद्र एक होते हुए भी अनेक हैं, रुद्र एक महाशक्तिशाली देवता है, उसकी शक्ति का विस्तार ही अनंतता है, यह रूपकात्मक वर्णन है। 5 मंत्रों में निर्देश अनावश्यक नहीं है, लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है, अभिवादन के समय अपना नाम लेते हैं, यद्यपि वह व्यक्ति आपका नाम पहले जानता है। जानते हुए को भी मधुपर्क देते समय कहा जाता है कि मधुपर्क लीजिए। 6 एक ही पदार्थ का नाना रूप में वर्णन लोक में भी होता है, अदिति की सर्वव्यापकता को बताने के लिए उसे सब कुछ कहा गया है, अदिति ही द्यूलोक अंतरिक्ष आदि सभी रूपों में है, जैसे लोक भाषा में कहते हैं जल जीवन है, जल में सारे रस हैं। 7 मंत्रों के अर्थ अस्पष्ट नहीं है, कोश ग्रंथों आदि से उनका अर्थ जानना चाहिए, अतएव शिक्षित और अशिक्षित में अंतर होता है, ज्ञानी अज्ञानी में यही अंतर है। यास्क ने चुटकी लेते हुए कहा है कि यदि कोई अंधा व्यक्ति ठूट से ठोकर खाकर गिर पड़ता है तो यह ठूट का दोष नहीं है, यह पुरुष का दोष है, अर्थ अस्पष्ट है तो यह आपके अल्प ज्ञान का फल है। नैस स्थानोरपराधो यदेन मंदो न पश्यति पुरुषापराध स भवति। अस्पष्टार्थ पदों के अर्थ ये हैं, अम्यक प्राप्नोति प्राप्त होता है, 2 यादृश्मिन यादृशे जिस प्रकार के कार्य में, 3 जार्याई स्तुयते स्तुति किया जाता है, स्तुत्यर्थ श्री धातु का रूप है, काणुका कांतानि मनोरम सोमरस पूर्ण पात्रों को, 5 जरभरी भरतारव भरण करने वाले, 6 तुरफरी हंतारव शत्रुओं के नाशक, परफरिका शत्रुणाम विदारी तारव शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने वाले, 8 वेदों की विभिन्न व्याख्या पद्धतियां। वेदों के गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न पद्धतियां अपनाई हैं। इनका संक्षिप्त परिचय यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। 1 आचार्य यास्क। आचार्य यास्क प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का निर्देश किया है। प्रायः सभी परवर्ती आचार्यों ने यास्क के निर्देशों का पालन किया है। वेदों की व्याख्या करते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। क मंत्रों की व्याख्या प्रकरण के अनुसार ही करनी चाहिए, पृथक से नहीं। ख मंत्रों की व्याख्या परंपरागत पद्धति के ज्ञान से करनी चाहिए, साथ ही उसमें तर्क या युक्ति संगतता होनी चाहिए, अर्थात वेदार्थ में परंपरागत अर्थ का ज्ञान आवश्यक है, वह युक्ति संगत होना चाहिए। ग वेदों में कुछ गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं, उन्हें आर्ष दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि से या कठिन परिश्रम से जाना जा सकता है। घ मंत्रों में 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, आधि भौतिक प्राकृतिक, 2 आधिदैविक देव विशेष से संबद्ध, 3 आध्यात्मिक परमात्मा या जीवात्मा से संबद्ध। ग मुख्य रूप से मंत्रों का प्रतिपाद्य एक परमात्मा ही है, विभिन्न गुणों और कर्मों के आधार पर उसके ही अन्य देवतावाचक नाम है, अर्थात अग्नि इंद्र मित्र वरुण आदि नाम उस परमात्मा के ही हैं, उसकी विभिन्न शक्तियों के वाचक ये नाम हैं। च परंपरागत अर्थ का ज्ञान आवश्यक है, परंपरागत अर्थ जानने वाले को पारोवर्यवित कहते थे। छ वेदार्थ बहुत गूढ़ है, अतः वेद की व्याख्या में बहुत सावधानी अपेक्षित है। प्रयत्न पूर्वक गूढ़ अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। आचार्य याश्क ने अपने समय में प्रचलित सभी व्याख्या पद्धतियों का उल्लेख किया है। इनमें वैयाकरण, इति वैयाकरणा, व्याकरण के अनुसार व्याख्या करने वाले, याज्ञिक, यज्ञ प्रक्रिया वाले, ऐतिहासिक, इतिहास मानने वाले, नैरुक्त, निरुक्त प्रक्रिया वाले, अधिदैव, आधिदैवत अर्थ मुख्यतः मानने वाले, आध्यात्मिक व्याख्या वाले, परिव्राजक आदि मुख्य हैं। सायण, उव्वट, महिधर आदि ने इन्हीं पद्धतियों का आश्रय लिया है। इनकी व्याख्या के केंद्र में प्रधान रूप से यज्ञीय प्रक्रिया रही है। दो, आचार्य सायण। वेदों की व्याख्या करने वाले आचार्यों में आचार्य सायण का स्थान अग्रगण्य है। वे अकेले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सभी वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों आदि की भी व्याख्या की है। उन्होंने परंपरागत शैली को अपनाया है तथा यज्ञ प्रक्रिया को सर्वत्र प्रधानता दी है। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों आदि को आधार बनाया है। निरुक्त की व्याख्या को भी अपनाया है। स्थान स्थान पर आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या भी की है। वे वेदों में इतिहास मानते हैं। वेदों को अपौरुषेय और नित्य मानते हैं। लौकिक इतिहास मानने के कारण स्वामी दयानंद जी ने इनकी कटु आलोचना की है। पाश्चात्य विद्वानों का आक्षेप है कि परवर्ती शंकराचार्य आदि द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत आदि का वेदों की व्याख्या में उल्लेख काल विपर्यस्तता दोष है। प्रोफेसर रुडोल्फ रोथ ने सायण की बहुत आलोचना की है और कई दोष निकालते हैं, परंतु मैक्स मूलर, विल्सन, गेल्डनर आदि विद्वान सायण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और मानते हैं कि सायण के भाष्य के आधार पर ही वैदिक वाङ्मय में उनकी गति हो सकी है। वस्तुतः पाश्चात्य जगत को वेदों का ज्ञान देने वाले आचार्य सायण ही हैं। तीन, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक युग में वेदों के पुनरुद्धारक माने जाते हैं। उन्होंने नैरुक्त प्रक्रिया का आश्रय लेकर वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की संपूर्ण की संस्कृत और हिंदी में व्याख्या की है। ऋग्वेद की व्याख्या मंडल 7 के 80 सूक्त तक ही कर सके। असामयिक निधन से ऋग्वेद भाष्य पूरा नहीं हो सका। महर्षि दयानंद के मंतव्य एवं भाष्य की मुख्य विशेषताएं ये हैं। एक, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें सभी विद्याओं के सूत्र विद्यमान हैं। दो, वेद अपौरुषेय हैं, किसी ऋषि आदि की कृति नहीं है। ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात्कार किया है, उनका प्रचार किया है, अतः वे विभिन्न मंत्रों के ऋषि कहे जाते हैं। तीन, वेदों में नित्य इतिहास है, लौकिक इतिहास नहीं। चार, वेदों के मंत्र केवल यज्ञ विषयक नहीं है, अपितु इनके विविध उपयोग हैं। पांच, वेदों में विभिन्न देवों के नाम रूढ़ या व्यक्ति विशेष के वाचक न होकर यौगिक हैं। देववाचक शब्द विभिन्न गुणों के बोधक हैं, अतः उन गुणों से युक्त राजा, विद्वान, सेनापति आदि भी उनके अर्थ हो सकते हैं। छह, वेदों में विविध विज्ञानों से संबद्ध सूत्र उपलब्ध हैं। सात, वेदों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक विषयों का भी समावेश है। आठ, वेदों में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं है, अपितु भौतिक विज्ञान, आयुर्वेद, गणित शास्त्र एवं अन्य विज्ञानों से संबद्ध सूत्र विद्यमान है। नौ, वेद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। दस, वेदों का यथार्थ ज्ञान नैरुक्त प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने स्वामी दयानंद के भाष्य पर अर्थ में खींचातानी स्वर प्रक्रिया का उचित ध्यान रखना तथा एक ही मंत्र का विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न अर्थ करना आदि दोष बताए हैं। इन आक्षेपों के उत्तर भी उनके समर्थकों द्वारा दिए गए हैं। पंडित मधुसूदन ओझा, महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले में अग्रगण्य हैं। उनका लंदन में संस्कृत में दिया गया एक व्याख्यान बहुत प्रसिद्ध है। अति नूतनम नहीं नहीं, अति प्रयत्नम रहस्यम, अर्थात अति नवीन रहस्य नहीं अपितु यह अति प्राचीन रहस्य है। इस प्रकार उन्होंने वैदिक विज्ञान को अति प्राचीन रहस्य बताया है। यद्यपि उन्होंने किसी वेद या ब्राह्मण ग्रंथ पर भाष्य नहीं लिखा है, परंतु संस्कृत में 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। इनमें उन्होंने वैदिक परिभाषाओं को स्पष्ट किया है, जिससे वेदार्थ ज्ञान सरल हो सके। उनकी शिष्य परंपरा में विशेष उल्लेखनीय है पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी और मोतीलाल शर्मा। पंडित गिरिधर शर्मा जी ने ओझा जी के विचारों का सुंदर प्रतिपादन अपने ग्रंथ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति में किया है। श्री मोतीलाल शर्मा ने एक उच्च कोटि का ग्रंथ दिग्देश काल मीमांसा लिखा है। 5. डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल महामनीषी डॉक्टर अग्रवाल श्री ओझा जी की व्याख्या पद्धति के अनुयायी हैं। आपने वेद विद्या, वेद रश्मि, उर्ज्योति आदि ग्रंथ हिंदी में लिखे और इंग्लिश में विजन इन लॉग डार्कनेस, थाउजेंड सेलेब्लेड स्पीच, वैदिक लेक्चरर्स आदि ग्रंथों के द्वारा वेदों की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्याख्या की है। इनके द्वारा व्याख्यात कुछ विशेष वैदिक संदर्भ ये हैं: नासदीय सूक्त, सुपर्ण, हिरण्यगर्भ, इंद्र, अग्नि, गायत्री, अज, एकपाद, गौरी, पुरुष, प्रजापति, सोम, अंगिरस, अग्नि, सविता, मेध तत्व, अश्वत्थ, विराट और वामन काल, अमृत गुहा, ऋत, सत्य, ज्योति, पूर्ण कुंभ, प्रजापति विद्या, सरस्वती। ये पंडित रामदत्त शुक्ल लखनऊ को अपना वेद गुरु मानते थे। उनकी प्रेरणा से ही ये वेद और पुराणों के गहन अध्ययन में प्रवृत्त हुए। लेखक को इन दोनों मनुष्यों का शिष्य होने का गौरव प्राप्त है। 6. योगी अरविंद। श्री अरविंद घोष क्रांतिकारी जीवन बिताने के बाद अरविंद आश्रम पांडिचेरी में योग साधना में प्रवृत्त हुए। उन्होंने द सीक्रेट ऑफ द वेद, हाइमेंस टू द माइस्टिक फायर, ऑन द वेद आदि वेदों पर लिखे हैं। इन्होंने स्वामी दयानंद के इन विचारों की पुष्टि की है। सर्व ज्ञानमयो हि सः, अर्थात वेदों में सभी ज्ञान विज्ञान के सूत्र विद्यमान हैं। इनकी दृष्टि रहस्यवादी है। ये वेदों में अध्यात्म विद्या के गुण रहस्यों की उपस्थिति मानते हैं। वेद आध्यात्मिक अनुभूतियों के कोश हैं। इन्होंने कुछ शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है। 1. इंद्र प्रबुद्ध मन का देवता है। वृत्र अज्ञान या अविद्या का प्रतीक है। 2. ऋत आध्यात्मिक सत्य है। 3. घृत घी ही नहीं अपितु ज्ञान के प्रकाश का द्योतक है। 4. वैदिक देवता विश्वव्यापी शक्तियां हैं। सरस्वती आंतरिक ज्ञान को प्रबुद्ध करने वाली शक्ति का नाम है। इस प्रकार श्री अरविंद ने वेदों की आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी व्याख्या की है। 7. श्री सातवलेकर वेद मूर्ति श्री पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर आधुनिक युग के सायण हैं। उन्होंने चारों वेद तैत्रीय संहिता, मैत्रायणी, काठक संहिता, दैवत संहिता आदि के विशुद्ध संस्करण निकाले हैं और चारों वेदों का हिंदी में सुबोध भाष्य प्रकाशित किया है। इनमें अथर्ववेद सुबोध भाष्य 5 खंडों में प्रकाशित। इनके प्रकांड पांडित्य का द्योतक है। ये स्वामी दयानंद के समर्थक हैं। इन्होंने अपने भाष्य में सायण का भी अनुसरण किया है। इनके ग्रंथ हिंदी, मराठी और गुजराती तीनों भाषाओं में प्रकाशित हैं। ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए अनेक लघु ग्रंथ लिखे हैं। इनके ग्रंथों की संख्या 100 से अधिक है। 102 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले श्री सातवलेकर साक्षात वेद मूर्ति थे। इन्होंने सारा जीवन ही वेदानुशीलन में बिताया था। ये वेदों की को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रेरणा स्रोत मानते थे। 8. डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर स्वामी आधुनिक कलाविद थे। इन्होंने ए न्यू अप्रोच ऑफ द वेद ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने वेदों को सिद्धों की वाणी कहा है। उनका कथन है कि वेदों का अर्थ समझने में ईसाई और अन्य संतों की वाणी तथा अध्यात्म प्रवण दांते आदि कवियों की अनुभूतियों से भी सहायता लेनी चाहिए। सिद्धों की वाणी में प्रायः समानता पाई जाती है। इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, अतः इन्होंने ईसाई संतों की वाणी से वैदिक ऋषियों की वाणी का तुलनात्मक अध्ययन करने पर बल दिया है। 9. डॉक्टर विष्णु कुमार वर्मा। डॉक्टर वर्मा ने वैदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य नामक ग्रंथ 2 भागों में लिखा। उन्होंने वैदिक विचारधारा का आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने वृत्र, अग्नि, इंद्र, हिरण्यगर्भ, मातरिश्वा, अंगिरस, मरुद्गण आदि ऋग्वेदीय नामों को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतीक मानते हुए सृष्टि की उत्पत्ति, गुरुत्वाकर्षण, काल स्थान, महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी आदि का विवेचन किया है। उन्होंने बताया है कि यह महाविस्फोट इंद्र परमात्मा के द्वारा वज्र संचालन के कारण हुआ था। इंद्र का वज्र संचालन ऊर्जाओं के नियोजित संघर्षण का द्योतक है। वेदों की यह परिकल्पना आधुनिक विज्ञान को अभी तक अज्ञात है। डॉक्टर वर्मा ने वैदिक शब्दावली की विज्ञान पर व्याख्या प्रस्तुत की है। 10. पाश्चात्य पद्धति। पाश्चात्य विद्वानों ने वेदार्थ के अनुशीलन के लिए तुलनात्मक भाषा शास्त्र और इतिहास की आवश्यकता पर बल दिया है। इस पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। इसके मूल में यह भावना निहित है कि भारतीय भाषा परिवार एक है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश आदि एक ही भारतीय भाषा से निकले हैं। समस्त भारतीय आर्य परिवार के व्यक्ति प्रारंभ में एक ही स्थान पर रहते थे। मूल भारतीय भाषा एक ही थी। धीरे धीरे आर्य परिवार के विभिन्न स्थानों पर गए, वे अपने साथ मूल धार्मिक भावनाओं को भी लेते गए। अतः उनके कर्मकांड धार्मिक मान्यता एवं संस्कृतियों में मूल रूप से एकता है। इस एकत्व को आधार मानकर देवशास्त्र, कर्मकांड आदि की तुलनात्मक व्याख्या की जा सकती है। इस मान्यता को अपनाकर प्रोफेसर रोडोल्फ रोट आदि विद्वानों ने वेदों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। यह पद्धति सैद्धांतिक रूप से सर्वथा ग्राह्य है। भाषा विज्ञान के आधार पर अनेक वैदिक देवों का इतिहास ज्ञात होता है। कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी ज्ञात होते हैं, परंतु इतने मात्र से वेदार्थ स्पष्ट होना संभव नहीं है। इस पद्धति के कुछ प्रमुख दोष ये हैं। एक, इस पद्धति से केवल देववाचक आदि कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण होता है, अन्य का नहीं। ऐसे शब्द 10% से अधिक नहीं है, शेष के लिए मार्ग अवरुद्ध है। दो, इस पद्धति से कर्मकांड का ज्ञान और उसकी पद्धति का विवरण अज्ञेय है, इसके लिए परंपरागत पद्धति का ज्ञान अपेक्षित है। तीन, इस पद्धति में भारतीय दृष्टिकोण की पूर्ण उपेक्षा की गई है। चार, इसमें वेदार्थ की गहराई में जाने का प्रयत्न नहीं किया गया है, वेद मंत्रों के आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ की उपेक्षा की गई है। छह, वेदों में निहित उदात्त भावनाओं का इस पद्धति के द्वारा उद्घाटन नहीं होता है। सात, इस पद्धति के द्वारा मंत्रों के अर्थ का अनर्थ किया गया है और मनगढ़ंत अर्थ दिए गए हैं। यह पद्धति पूर्वाग्रह से प्रेरित है और भारतीय संस्कृति को दूषित करने का प्रयत्न है। नौ, इसमें ईसाई धर्म के महत्व और वैदिक धर्म की हीनता के प्रचार का प्रयत्न किया गया है। दस, दुबोध स्थलों के लिए हास्यास्पद पाठ भेद प्रस्तुत किए गए हैं, अतः वेदार्थ के लिए यह पद्धति स्वीकार्य नहीं है।